सिविल सेवा की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, हम लोगों ने 1935 तक की स्थिति को देख लिया। 1935 का एक्ट आया, उस एक्ट के तहत फिर चुनाव हुए और किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीय सेना को बिना भारतीय नेताओं की अनुमति के भेज देने के कारण कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया और ये समझ लीजिए कि स्थिति फिर पहले ही जैसी हो गई, यानी कि फिर से टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। लग रहा था कि 1935 के एक्ट के बाद स्थितियां थोड़ी सी धीरे धीरे नॉर्मल होती चली जाएंगी और जो सत्ता का हस्तांतरण किया जाना है वो ठीक ठाक तरीके से हो जाएगा, क्रमशः ही होगा लेकिन हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अंग्रेजों ने सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीय सेना को भेजा और भारतीय नेताओं से इसके बारे में कोई सलाह मशविरा नहीं किया, या इनफैक्ट सच पूछिए तो भारतीय नेताओं के लिए भी अपमानजनक बात थी और उसका परिणाम फिर इस रूप में सामने आया। अब हम इस लेक्चर में इससे आगे की स्थितियों को देखेंगे। दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहूंगा कि अब मैं जिन घटनाओं की चर्चा कर रहा हूं, देखिए एक एक घटनाओं को विस्तार से मैं यहां आपके सामने नहीं रख सकता, लेकिन जिन घटनाओं की चर्चा मैं यहां करने जा रहा हूं उन सारी घटनाओं को, चाहे वो प्रस्ताव के रूप में हो, चाहे वो मिशन के रूप में हो, चाहे वो एक्ट के रूप में हो, जो भी हो, जिस रूप में भी हो, आपको उन्हें बहुत महत्वपूर्ण मानकर चलना है। और महत्वपूर्ण मानकर चलने से पहले आपको अपनी आंख में अब तक जिस चश्मे को लगा करके आप इन सब घटनाओं को देख रहे थे, अब उस चश्मे को भी थोड़ा सा बदलना है। तो ये बदलाव क्या होगा, इसे ध्यान से सुन लीजिए। आपने देखा कि 1935 का जब एक्ट आया तो अब अंग्रेजों ने कहीं न कहीं इस बात को स्वीकार कर लिया है कि नहीं, अब भारत में ज्यादा दिन तक हम नहीं टिकेंगे और यहां भी हमें डेमोक्रेसी देनी ही पड़ेगी, इसीलिए वो उस तरह का एक्ट लेकर के आए। बकायदे भारत में चुनाव भी हो गए, आप जानते हैं। अनफॉर्चुनेटली यह स्थिति नहीं आगे बढ़ सकी। काश कि ऐसा हुआ होता तो सत्ता का हस्तांतरण बहुत आसानी से हो जाता, क्योंकि इसके बाद भी 2-3 बड़े आंदोलन भारत को करने पड़े, जिसमें आप जानते हैं कि गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन रहा है, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन तो बहुत बड़ा आंदोलन रहा है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि कैसे 1943 के बाद से सुभाष चंद्र बोस चले जाते हैं और फिर आजाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं और किस तरह से जापान और जर्मनी के साथ मिलकर के वो चाहते हैं कि कैसे ब्रिटेन को मजबूर कर दिया जाए कि वो भारत को आजाद करे। एक बात आपको यहां ध्यान में और भी रखनी है और वो ये कि अभी तक जो सेकेंड वर्ल्ड वार की स्थिति रही है, मैं 1943-44 तक आपको ले जा रहा हूं, तो ये जो ब्रिटेन थी और ब्रिटेन के साथी जो थे इनकी हालत खराब होती चली जा रही थी। जो जर्मनी, जापान और इटली की जो संयुक्त सेना थी वो इन पर भारी पड़ रही थी, तो ब्रिटेन भी इस बात को लेकर के चिंतित था। अमेरिका तो देखिए अलग से बैठ करके और तमाशा देख रहा था, वो बाद में युद्ध में शामिल होता है। अमेरिका भी ब्रिटेन के अंडर में रह चुका था और अमेरिका में भी डेमोक्रेसी आ चुकी थी, तो अमेरिका का लगातार दबाव ब्रिटेन पर इस बात के लिए पड़ रहा था कि भैया आप जो है बकायदे भारतीयों से समझौता कीजिए, भारतीयों का समर्थन लीजिए खासकर इस युद्ध के लिए, और साथ ही साथ अब जल्दी से जल्दी भारतीयों को आजाद करने के रास्ते पर आगे बढ़िए। ब्रिटेन पर लगातार अमेरिका का यह दबाव था, बल्कि जो दूसरे देश थे कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उनका भी दबाव काम कर रहा था। तो अब देखिए कि ब्रिटेन इधर युद्ध में मात खा रहा है, 1935 के एक्ट ने काम करना बंद कर दिया है, अमेरिका का दबाव लगातार ब्रिटेन पर बना हुआ है और भारतीय नेताओं ने फिर से संघर्ष छेड़ दिया और उसमें भी 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जैसा आंदोलन। तब ब्रिटेन के लिए इन सबसे निपटना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि उधर वो युद्ध में उलझा हुआ है और इधर भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा है, और फिर उधर सुभाष चंद्र बोस ने जब खासकर जापान, जर्मनी, इटली वगैरह से हाथ मिलाया, इटली तो खैर उस सीधे तस्वीर में नहीं है लेकिन जर्मनी और जापान तो है, तो ब्रिटेन और चिंतित हो उठा, क्योंकि जो ब्रिटेन है वो किन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, जापान, जर्मनी, इटली के खिलाफ, और भारत के एक नेता सुभाष चंद्र बोस जो अपने समय के बड़े पॉपुलर लीडर रहे हैं वो अगर उनसे मिलते हैं तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन के दिमाग में खौफ तो है ना। तो ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन अब आपको दिमाग में रखनी होगी। और जैसा कि मैं शुरू में बता चुका हूं कि 1935 के एक्ट ने यह प्रूफ कर दिया था कि अब यहां डेमोक्रेसी आने वाली है और अंग्रेज अब ज्यादा दिन तक यहां बने नहीं रह सकेंगे, और अगर बने रह भी गए, थोड़ा लंबा खींच भी लिया, तो अधिकार तो अब उनके पास उतने नहीं रहेंगे। इस प्रकाश में हमें आगे की घटनाओं को समझना होगा और बहुत ही ध्यान से समझना होगा, क्योंकि अब जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो बहुत तेजी के साथ घटित हो रही हैं। एक साल, दो साल, तीन साल में एक बड़ी घटना हो रही है, एक बड़ा प्रस्ताव आ रहा है, एक बड़ा मिशन आ रहा है, एक बड़ी बैठक हो रही है, सम्मेलन हो रहा है। अब घटनाएं तेज हो गई हैं, उनकी जो स्पीड है वो बढ़ चुकी है। और देखिए, होता ही है, जब आग बुझने को होती है यानी कि खत्म होने को होती है तो क्या है, ज्यादा लपलपाती है ना। तो यहां भी हमें वही बात दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, 1939 तक आप देख चुके हैं, और अब हुआ ये कि बार बार लगातार दबाव पड़ रहा था, खासकर जो हमारे उस समय वायसराय थे, 1940 की बात मैं बता रहा हूं, लिन लिथगो, उन पर यह दबाव पड़ रहा था कि भैया ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार है इसमें आप भारतीयों का सहयोग लीजिए, अदरवाइज हम इस वर्ल्ड वार को कैसे जीत पाएंगे। तो वायसराय ने फिर उस समय एक घोषणा की 1940 में, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, अगस्त प्रपोजल, प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। अब आप देखिए कि इस प्रस्ताव में क्या कहा जा रहा है। अगर डायरेक्शन की मैं बात पूछूं तो आप सीधे कहेंगे कि हां, भारत को आजाद करने का ही डायरेक्शन होगा, डेमोक्रेसी को और ज्यादा विस्तार देने का डायरेक्शन होगा, यही दिशा तो यही होगी, और बिल्कुल आप सही हैं। बस आप दिशा को ध्यान में रखिए, उस समय की जो थोड़ी बहुत परिस्थितियां हैं उन्हें आप दिमाग में लेकर के चलिए। फिर प्री में या मेंस में कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लिखने की स्थिति में कम से कम अपने आप को पालेंगे। ऐसा नहीं होगा कि यार इसमें तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है। और मेरी कोशिश केवल अपने इन लेक्चर्स के जरिए आपको इसी के लिए सक्षम बनाना है। तो देखिए, घोषणा की गई अगस्त प्रस्ताव में कि हम भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दे देंगे, डोमिनियन स्टेट्स। चलिए, आप पूरी तरह से स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं है, लेकिन डोमिनियन स्टेट्स देने का वायदा तो आपने किया, और जो आप वायदा कर देंगे उससे आप पीछे तो नहीं हटेंगे, कुछ समय के बाद तो नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं हम डोमिनियन स्टेट भी नहीं देंगे। ये स्वतंत्रता की दिशा में ही उठाया गया एक कदम है, क्योंकि उस समय कनाडा पर भी ब्रिटेन का शासन था और उसे डोमिनियन स्टेट देने की मांग कर रही थी। सच पूछिए तो कनाडा मांग ही यही कह रहा था कि हमें डोमिनियन स्टेट दे दीजिए। उसी को उन्होंने यहां अप्लाई करने की कोशिश की। डोमिनियन स्टेट का मतलब है कि ठीक है, आप अपना राजकाज चलाइए लेकिन टॉप पर हम बैठे रहेंगे, इसे आप समझने के लिए डोमिनियन स्टेट मान लीजिए। लेकिन भारत तो ये मानने से रहा, क्योंकि जो लाहौर अधिवेशन था 1929 का, उसे याद करने की कोशिश कीजिए, उसमें तो आप मांग चुके हैं ना पूर्ण स्वराज्य, कोई आधा अधूरा नहीं। तो जो डोमिनियन स्टेट है बेसिकली आप यूं कह लीजिए कि आधा अधूरा स्वराज्य है, लेकिन आपने कम से कम एक घोषणा कर दी। फिर यह कहा गया कि युद्ध की जो सलाहकारी परिषद है, सलाह देने वाली जो काउंसिल है, उसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा। करना ही था, क्योंकि भारतीयों के परमिशन के बिना ही आपने सेना भेज दी थी, और उसी के कारण ये सारा प्रॉब्लम हो, और उसी के कारण ये सारी प्रॉब्लम हुई थी। तो अब यह हुआ कि इस परिषद में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। याद रखिए, युद्ध की सलाहकार परिषद की बात मैं कर रहा हूं। हां, लेकिन वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें भी भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। जब मैं कह रहा हूं वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है, तो उसका मतलब भी क्या हुआ, डेमोक्रेसी, यानी कि जो वायसराय के जो अधिकार हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि अगस्त प्रस्ताव में ये घोषणा की गई कि युद्ध के बाद बकायदे संविधान सभा का गठन किया जाएगा और अपना संविधान भारत खुद बनाएगा, ये बात कही गई। लेकिन इस अगस्त प्रस्ताव को किसी ने स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया दोस्तों, इस पर मैं अभी नहीं जा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इस पर जाने लगा तो फिर वो केवल अगस्त प्रस्ताव पर ये लेक्चर हो जाएगा, फिर जिस पर्पस को लेकर के हम लोग चल रहे हैं वह सर्व नहीं हो पाएगा। अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया, फिर गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया 1940-41 के बीच में। व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब यही है कि एक एक व्यक्ति सत्याग्रह करेगा, उसे आप देख लेंगे। फिर 1942 का क्रिप्स मिशन आता है, उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल थे, वो थोड़े से हार्ड हेडेड किस्म के आदमी थे, वो भारत को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे और ये तो स्वीकार ही नहीं कर सकते थे कि किसी देश को ब्रिटेन से आजाद कर दिया जाए। लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम यह किया कि ब्रिटिश संसद के एक सदस्य थे और वो लेबर लीडर भी थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। उनके लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में 1942 में एक मिशन भारत भेजा गया, क्योंकि ब्रिटेन पर, जैसा कि मैंने कहा, कि लगातार ये दबाव बढ़ रहा था कि आप भारतीयों का समर्थन प्राप्त कीजिए कीजिए। 1942 तक पहुंचते पहुंचते ब्रिटेन की हालत थोड़ी सी खराब भी होने लगी थी। तो मिशन को कुछ उद्देश्य दे करके भेजे गए, दोस्तों वो उद्देश्य आप देख लेंगे। हालांकि ये सारे के सारे जो उद्देश्य थे वो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिए गए, कांग्रेस ने भी रिजेक्ट किए और उसके पैरेलल जो दूसरी पार्टी चल रही थी मुस्लिम लीग, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इसमें कोई बहुत चीजें स्पष्ट रूप से नहीं की गई थी, सब मामला जो है गोलमोल किया गया था। तो इस पर भी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, अब मैं किसी पर भी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स बता रहा हूं, बस इन्हें आप ध्यान में रखें। जब क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया गया और निराश होकर के जो हमारे क्रिप्स महोदय थे वापस लौट गए, तो उनके जाने के बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा गया, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, कि भैया अब बहुत हो चुका, अब भारत छोड़ करके आप जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, आपको इसकी अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए। दोस्तों जब भारत छोड़ो आंदोलन सफल रहा और अंग्रेज थोड़े से परेशान हुए और लगभग लगभग सेकेंड वर्ल्ड वार भी खत्म होने को था, 1945 की बात मैं कर रहा हूं, तो फिर वेवेल योजना हमारे सामने आई। वेवेल, उस समय हमारे जो वायसराय थे वो लॉर्ड वेवेल थे, उन्होंने शिमला में एक सम्मेलन बुलाया, इसलिए इस वेवेल योजना को शिमला सम्मेलन भी कहा जाता है, लेकिन खासकर यह वेवेल योजना भी सफल नहीं हो पाई। 1945 की बात है, फिर आजाद हिंद फौज, इस बीच में मैंने आपसे चर्चा की कि पैरेलल अंग्रेजों के खिलाफ लगा हुआ था, और 1945 के आसपास 1946 में 9 सैनिकों का विद्रोह हुआ और इस 9 सैनिकों के विद्रोह ने अंग्रेजों को अंदर से हिलाकर रख दिया। ये फरवरी की बात है, अंग्रेजों को लगा कि अगर सेना ही विद्रोह कर रही है तो हम किसके दम पर यहाँ टिके रह सकेंगे। तो दोस्तों 9 सैनिक विद्रोह के बाद फिर कैबिनेट मिशन भारत में आया। उस समय जो भारत मंत्री थे हमारे पैथिक लॉरेंस, उनकी अध्यक्षता में कुछ लोग भारत आए और उनको ये कहा गया था कि अब आप भारत को आजाद कराने के बारे में देखिए कि क्या क्या कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन ने यहां आकर के फिर बातें की, और बाद में फिर जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली बने तो उन्होंने घोषणा की कि भारत को 30 जून 1948 तक आजाद कर दिया जाएगा। और इस उद्देश्य से फिर लॉर्ड माउंटबेटन यहां वायसराय बना करके भेजे, लेकिन जब वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन आए तो उन्हें लगा कि नहीं, ज्यादा दिन तक यहां टिके नहीं रह सकते हैं, तो उन्होंने जल्दी ही भारत को आजाद कराने की घोषणा की। और आप जानते हैं कि फिर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। तो ये मैंने कुछ आपको जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो घटनाएं हो सकती हैं, जो माइलस्टोन जिसे आप कह लीजिए पड़ाव, उनकी जानकारी दी है, जिनकी बहुत अच्छी तैयारी आपके पास होनी चाहिए। और इस तैयारी का डायरेक्शन क्या होगा दोस्तों, ये मैं शुरू में आपको बता चुका हूं। तो आज बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहां समाप्त करता हूं। नमस्कार।